श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 30। ये श्लोक बहुत ही अधिक प्रेरणादायक है और इसको हमें भक्तों को जरूर पढ़ना चाहिए और इसका चिंतन करना चाहिए, इससे भक्ति में बहुत प्रेरणा मिलती है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त का स्वभाव ही पाप करना होता है। इसका अर्थ ये है कि भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाग है, अर्थात उसका संकल्प है कि मैं कृष्ण का भजन करूंगा ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और ये जो मेरी पूरी आदतें हैं मेरी शक्ति नहीं है कि मैं इनको अपने हृदय से निकाल सकूं, और भले ही मुझे इसके लिए नरक भी क्यों ना जाना पड़े। भक्तों को नरक नहीं जाना पड़ता है, लेकिन भक्त का भाव यही है कि इन गलतियों की वजह से भले ही मुझे नरक भी जाना क्यों ना पड़े तो भी मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए बोल रहे हैं सम्यग व्यवस्थितो हिस्सा, उसका संकल्प एकदम सम्यक बहुत अच्छा है, और इसी संकल्प के कारण उस व्यक्ति को साधु कहा जा रहा है। मतलब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन भोग की इच्छाएं जो कि पहले से हैं उस कारण से व्यक्ति प्रयास करते हुए भी, भक्ति का प्रयास कर रहा है करने का और फिर भी नहीं कर पाता, या नियमों का पालन ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी ही है, पूरे प्रयास में लगा रहता है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति साधु है। तात्पर्य इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दुराचार मतलब खराब आचरण और सुदुराचार मतलब बहुत ज्यादा खराब आचरण। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त तो जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। मतलब हम जब बदअवस्था में होते हैं और भक्ति भी करते हैं तो कुछ कार्य तो हम भक्ति के करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और कुछ कार्य हम इस जगत के संबंध में करते हैं, शरीर के पोषण के लिए, परिवार के पोषण की इत्यादि के लिए, तो ये सब बद्ध अवस्था में कहा जाते हैं। इनको नित्य धर्म या नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म भी कहा जाता है। नित्य कर्म का अर्थ ये है जो हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति करते हैं, भगवत धर्म कहा जाता है जो कि हमारा शाश्वत नित्य कर्तव्य है, और नैमित्तिक मतलब सर्कमस्टेंशियल परिस्थिति जनक। इस समय कोई विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति स्त्री के शरीर में है, पुरुष के शरीर में है, व्यापारी है, कुछ भी अलग अलग परिस्थितियां जो हैं जो कि हमेशा नहीं रहेंगी, उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को कुछ कार्य करना होता है जो कि उसकी बद्धावस्था के अनुसार कार्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से दो अलग प्रकार के कर्म होते हैं। तो जो व्यक्ति शास्त्र के अनुमोदन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसको भक्तिपरक कार्य करता है उसको भक्ति कहा जाता है। ये प्रभुपाद समझाए हैं। बद्धावस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, अर्थात भक्ति भी कर रहा है और शरीर का पोषण भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भगवान का प्रसाद खा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। मतलब भक्ति और उसके जो बद्ध जीवन के कार्य हैं, शरीर का पोषण या जो कुछ भी है, वो आपस में काटे नहीं एक दूसरे को। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसकी कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब कोई भक्त से किसी भी भक्त से कोई पाप हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भक्ति को छोड़कर कोई और प्रायश्चित करे, उसे भक्ति ही करना चाहिए, अन्यथा ये भक्ति के प्रति अश्रद्धा का सूचक होगा। भक्ति इतनी प्रबल है कि उसको और किसी साधन की जरूरत नहीं है भक्त के हृदय से पाप को नाश करने के लिए। भक्त का बस यही संकल्प होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो मैं भगवान का नाम जप करना भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, अर्थात ये जो भौतिक आकर्षण है वो हमारे हृदय में इतने सालों से है कि भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर के इसमें बह जाना ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है, इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। आत्मा को रस चाहिए तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भक्ति में भी कुछ रस मिलता है, लेकिन भौतिक रस की अनुभूति भी पूरी तरह से जाती नहीं है, तो इस कारण से भक्त कभी कभी भौतिक रस को ढूंढने के लिए भौतिक रस की खोज में भौतिक भोगों में लग जाते हैं। लेकिन वो ये भी अनुभव करते हैं कि ये रस तो कुछ समय के तुरंत बाद ही फीके पड़ जाते हैं, क्या ही अच्छा होता कि मैं भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करता। तो इस प्रकार से अपने आप को धिक्कारता भी है भक्त कि मैं क्यों इस इंद्रियवृत्ति में लग गया। लेकिन फिर क्योंकि कृष्ण भावनामृत का भी आकर्षण उसके हृदय में है तो उस कारण से फिर वो वापस कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में लग जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के में का जो उच्चतर रस है उसको प्राप्त कर लेता है फिर उसका पतन नहीं होता है, लेकिन जब तक नहीं है वो प्रारंभिक अवस्था में है तो पतन की संभावना है और इसके लिए भक्त को भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देव वशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। बहुत सुंदर बात श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है उसको निंदा नहीं करना चाहिए, दृढ़ता से हरे कृष्ण कर रहा है और अगर किसी कारणवश उसका कोई दोष दिखता भी है हमें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए ये समझते हुए कि ये एक दिन जरूर शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद इस समाज में बड़ा अच्छा उत्तर दिया करते थे कि कोई व्यक्ति है जो स्नान कर रहा है तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति स्नान कर रहा है, अब उसके शरीर में कुछ गंदगी लगी हुई है अगर उसको हम देखते हैं और मजाक बनाते हैं तो ये दोष कह सकते हैं दोष दृष्टि होगी या छिद्रान्वेषण कहा जाता है ये होगा। हमें समझ में आना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है अंततोगत्वा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। साधुरेवा शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। यह भक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है, यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। देखिए साधु रेवा का अर्थ ये है कि साधु के अलावा उसे और कुछ नहीं मानना चाहिए। कोई व्यक्ति कहे देखिए जितनी मात्रा में वो भक्ति कर रहा है उतनी मात्रा में तो मैं साधु मानूंगा, लेकिन अगर वो बुरे कार्य कर रहा है तो मैं उसको साधु नहीं मानूंगा। तो भगवान कह रहे नहीं, उसको साधु रेवा साधु ही मानो और कुछ नहीं मानो, और अगर कोई नहीं मानता है तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन का अपराध उस व्यक्ति को लगता है। तो बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई भक्त का पतन हो जाता है हमें कभी उपहास नहीं करना चाहिए, और देखिए अगर इस प्रकार का उपहास करेंगे तो अपराध बनेगा और हो सकता है कि हमारा खुद का भी इस प्रकार से पतन हो जाए, तो इसलिए भक्तों की कभी इस प्रकार से निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है, भगवती चहराव अनन्य चेता वृषमलनोपि विराजते मनुष्यः नहि शशकलुष छभिः कदाचित् तिमिरपरा भवत भवतामुपैति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी गृणित कार्यकर्ता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता है। अब ध्यान देना चाहिए कि प्रभुपाद इस बात को समझाएंगे, आकस्मिक पतन मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं, क्योंकि नाम से सारे पाप कटते हैं इसलिए अब मैं पहले पाप करूंगा और उसके बाद नाम जप कर लूंगा, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने स्वभाव वश पूर्व आदत वश अगर भक्त अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता है और भगवान के भजन में उसकी बाधा आ जाती है और वो उसका पतन होता है कुछ कारणों से और फिर वापस वो भगवान के भजन में लग जाता है तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है, मतलब लाइसेंस नहीं लेना चाहिए इसका। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करने चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपने चरित्र सुधार नहीं कर लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। अर्थात आप समझ रहे हैं कि भगवान का नाम हमारी रक्षा करते हैं लेकिन हमें इस प्रकार का लाइसेंस नहीं लेना चाहिए पाप करने का, तब इस प्रकार की चीजें हम पर अप्लाई करती हैं। भक्त यानी कहने का अर्थ यह है कि भक्त हृदय से चाहता है इंद्रिय तृप्ति को से दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी अपने पुराने संस्कारों के कारण वो नहीं कर पाता किसी परिस्थिति में, तो उसका मतलब नहीं है कि वो भक्ति के पद से च्युत हो गया है और भक्ति नहीं कर सकता। तो बड़ा ही प्रेरणादायक श्लोक है। हम सभी लोग किसी न किसी रूप से किसी न किसी स्तर में इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से संघर्ष कर रहे हैं तो और भक्ति भी कर रहे हैं, तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करें, भगवान के भक्ति के पथ से अविचल रहें, छोड़े नहीं, और इससे बहुत जल्दी हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ जाएंगे जिसके बारे में अगले श्लोक में भगवान चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।